लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे संकट में फंसे परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि टूटे हुए परिवार क्षमा के माध्यम से अपने घावों का उपचार खोज सकें और अपने बीच व्याप्त मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के उपहारों को फिर से खोजने में सक्षम बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के लिए पोप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। जमेले अस्पताल की 10वीं मंजिल पर खिड़कियां बंद रहती हैं, लेकिन उनके भीतर से पोप फ्रांसिस विश्व एवं उसकी गतिशीलता का अवलोकन करते रहते हैं। वे अस्पताल में इन दिनों अपने प्रति स्नेह की लहर को भी महसूस करते हैं और यूक्रेन, मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में जारी युद्ध को भय और पीड़ा से देखते हैं। संत पापा ने रविवार को देवदूत प्रार्थना के लिए तैयार संदेश में लिखा, यह युद्ध यहाँ से और भी अधिक बेतुका प्रतीत होता है। यह तीसरी बार है जब संत पापा अस्पताल में भर्ती होने के कारण देवदूत प्रार्थना का नेतृत्व नहीं कर पाए हैं। जेमेले अस्पताल में भर्ती होने के कारण संत पापा फ्रांसिस तीसरे रविवार भी देवदूत प्रार्थना का नेतृत्व नहीं कर पाए। वे जेमेले अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने विश्वासियों के लिए एक संक्षिप्त संदेश भेजा है, जिसे वैटिकन प्रेस कार्यालय ने 2 फरवरी को प्रकाशित किया। अपने संदेश में पोप ने प्रार्थनाओं एवं चिकित्सा देखभाल के लिए आभार व्यक्त किया है, जबकि शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करने का आग्रह किया है। रविवार के सुसमाचार पाठ पर चिंतन करते हुए उन्होंने दूसरों को करुणा से देखने और हमेशा भलाई की भावना से बोलने के महत्व पर जोर दिया है। पोप अपने संदेश में लिखते हैं, प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस रविवार के सुसमाचार पाठ में यीशु हमें 5 इंद्रियों में से 2 पर चिंतन करने के लिए कहते हैं, दृष्टि और स्वाद। दृष्टि के संबंध में वे हमसे कहते हैं कि हम अपनी आंखों को प्रशिक्षित करें ताकि हम संसार को अच्छी तरह देख सकेंगे और दूसरों का न्याय उदारतापूर्वक कर सकेंगे। यीशु कहते हैं, पहले अपनी ही आंख की धरन निकालो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। संत पापा ने कहा, केवल निंदा की नहीं बल्कि देखभाल के इस दृष्टि से ही भ्रातृपूर्ण सुधार एक सद्गुण हो सकता है, क्योंकि यदि यह भ्रातृपूर्ण नहीं होता है तो यह सुधार के लिए नहीं होता। स्वाद के संबंध में यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है और मनुष्य का फल उसके शब्द हैं जो उसके होठों पर पकते हैं, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से बाहर आता है। बुरे फल हिंसक, झूठे, अश्लील शब्द होते हैं, जबकि अच्छे शब्द सही और वफादार होते हैं और हमारी बातचीत में मिठास भरते हैं। तब चिंतन के लिए आमंत्रित करते हुए संत पापा कहते हैं, हम अपने आप से पूछें, मैं दूसरे लोगों को जो मेरे भाई बहन हैं किस नजर से देखता हूँ और जब वे मुझे देखते हैं तो मुझे कैसा लगता है? क्या मेरे शब्द अच्छे हैं या वे कड़वाहट और घमंड से भरे हैं? तत्पश्चात जमेले अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना आभार प्रकट करते हुए संत पापा ने कहा, बहनों और भाइयों, मैं आपको ये चिंतन पुनः अस्पताल से भेज रहा हूँ, जहाँ जैसा कि आप जानते हैं मैं कई दिनों से भर्ती हूँ। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी बड़ी सावधानी से मेरी देखभाल कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने हृदय में उस आशीर्वाद को महसूस करता हूँ जो नाजुकता के भीतर छिपा हुआ है, क्योंकि ठीक इन्हीं क्षणों में दिलों से प्रभु के लिए की गई प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपके संपूर्ण स्नेह और आपकी निकटता को महसूस करता हूँ, और इस विशेष क्षण में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ईश्वर के सभी लोगों के द्वारा उठाया और समर्थन दिया जा रहा हूँ। आप सभी को धन्यवाद। मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, और सबसे बढ़कर मैं शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ से युद्ध और भी अधिक बेतुका प्रतीत होता है। हम पीड़ित यूक्रेन, फिलिस्तीन, इसराइल, लेबनान, म्यांमार, सूडान और कीवू के लिए प्रार्थना करते हैं। हम पूरे विश्वास के साथ अपने आप को माता मरियम के हाथों से पोर्ट करते हैं। आप सभी को रविवार की शुभकामनाएं। ये थे पोप फ्रांसिस के शब्द, जिसको उन्होंने रविवार देवदूत प्रार्थना के लिए विश्वासियों को समर्पित किया है।
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
पोप फ्रांसिस 14 फरवरी से ही जेमेली अस्पताल में भर्ती हैं। पिछले एक सप्ताह से दुनिया भर से श्रद्धालु, कार्डिनल्स, धर्माध्यक्ष और कुरिया के सदस्यों के साथ संत पेट्रस महाज्ञघर के प्रांगण में एकत्रित होकर पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए हम भी पूरी कलीसिया के साथ मिलकर पोप फ्रांसिस के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया की माता कुंवारी मरियम इस समय उनकी सहायता करें।
गाएंगे हम वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस के स्वास्थ्य पर सोमवार सुबह अपडेट में वाटिकन प्रेस कार्यालय ने कहा कि संत पापा फ्रांसिस ने आरामदायक रात बिताई। यह नवीनतम अपडेट रविवार शाम के बयान के बाद आया है, जिसमें संकेत दिया गया था कि संत पापा की हालत स्थिर बनी हुई है। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने आगे की जानकारी देते हुए कहा कि संत पापा को गैर आक्रामक यांत्रिक वेंटिलेशन की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि उन्होंने हाल के दिनों में किया था, लेकिन अभी भी पूरक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। इसमें यह भी उल्लेख किया गया है कि संत पापा को बुखार नहीं है। रविवार को संत पापा फ्रांसिस ने उन लोगों के साथ पवित्र मिसा में भाग लिया जो अस्पताल में भर्ती होने के दौरान उनकी देखभाल कर रहे हैं। उन्होंने बाकी दिन आराम और प्रार्थना में बिताया। जमेली अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद संत पापा अपने काम जारी रखे हुए हैं। सोमवार 3 मार्च को संत पापा ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वर्ष अक्टूबर में होने वाले विश्व प्रवासी एवं शरणार्थी दिवस के लिए चुने गए थीम की जानकारी दी। संदेश में संत पापा ने लिखा, मैंने 111वें विश्व प्रवासी और शरणार्थी दिवस के लिए थीम के रूप में प्रवासी आशा के मिशनरी को चुना है। बहुत से प्रवासी और शरणार्थी ईश्वर पर अपने भरोसे के माध्यम से आशा की गवाही देते हैं। 2025 जुबली के दौरान विश्व प्रवासी एवं शरणार्थी दिवस अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। और 2 मार्च को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखे संदेश में संत पापा ने रविवार के सुसमाचार पाठ पर चिंतन प्रस्तुत किया, प्रार्थनाओं और चिकित्सा देखभाल के लिए आभार व्यक्त किया और युद्धरत देशों में शांति के लिए निरंतर प्रार्थना करने का आग्रह किया। पहले संदेश में संत पापा ने लिखा, संत लूकस के सुसमाचार से लिए गए आज के पाठ में यीशु हमसे कहते हैं कि हम अपनी आँखों को दुनिया को अच्छी तरह देखने के लिए और अपने पड़ोसी का न्याय करने के लिए प्रशिक्षित करें। केवल देखभाल करने वाली इस नज़र से जो निंदा नहीं करती, भ्रातृत्वपूर्ण सुधार एक सद्गुण बन सकता है। दूसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जो दुनिया के कई हिस्सों से इतने सारे विश्वासियों के दिलों से प्रभु तक पहुँचती है। मैं आपका सारा स्नेह और निकटता महसूस करता हूँ और इस विशेष क्षण में मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं ईश्वर के सभी लोगों द्वारा उठाया गया और समर्थित हुआ हूँ। तीसरे संदेश में संत पापा ने लिखा, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। मैं सबसे बढ़कर शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। यहाँ से युद्ध और भी बेतुका लगता है। आइए हम शहीद यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजरायल, लेबनान, म्यांमार, सूडान और कीवू के लिए प्रार्थना करें। और जमेली अस्पताल में हस्ताक्षरित जीवन के लिए परम धर्म पीठी अकादमी की आम सभा को दिए गए अपने संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने वर्तमान स्थिति का विश्लेषण किया, जहां युद्ध, महामारी, जलवायु परिवर्तन और नई प्रौद्योगिकियों के खतरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तकनीकी तंत्र हमें नहीं बचाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रगतिशील अप्रासंगिकता पर ध्यान दिया। वैश्विक बहुसंकट की अनेक बारीकियां, जिसमें संघर्ष, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा मुद्दे, महामारी, प्रवासी घटनाएं और तकनीकी नवाचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन चुनौतियों का जवाब एक ऐसे विश्व में तेजी से जटिल होता जा रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रगतिशील अप्रासंगिकता को देख रहा है, जो अक्सर विशेष और राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बदलती राजनीतिक गतिशीलता से अंधी हो जाती है। एक ऐसा संदर्भ जिसमें सबसे शक्तिशाली का कानून हावी होता है, जो अमानीय बनाता है। संत पापा ने अपने संदेश में व्यक्तिगत और समाज दोनों के रूप में परिवर्तन के प्रति गहरे प्रतिरोध को देखा। इस संदर्भ में वे हमें कोविड महामारी पर चिंतन करने के लिए आमंत्रित करते हैं। इसे एक बर्बाद अवसर कहते हैं, क्योंकि हमने विवेक और सामाजिक प्रथाओं के सच्चे परिवर्तन का पक्ष नहीं लिया, जैसा कि प्रेरितिक प्रबोधन लौदाते देयुम में आशा व्यक्त की गई थी। प्रगति के लिए और अपनी निश्चितताओं, अपनी आदतों और अपने डर से बंधे हुए स्थिर न रहने के लिए विज्ञान की आवाज पर कान लगाना जरूरी हो जाता है। एक निर्णायक विषय सुनने का, जिसे धर्माध्यक्षों की पिछली सभा के माध्यम से भी बढ़ावा दिया गया था, जो कि सिनोडालिटी के विषय के लिए समर्पित था। लोगों से मिलकर और उनकी कहानियों को सुनकर तथा वैज्ञानिक ज्ञान को सुनकर हमें यह एहसास होता है कि मानव विज्ञान और संस्कृतियों से संबंधित हमारे मानदंडों में कितना गहन संशोधन की आवश्यकता है। संत पापा लिखते हैं, यहाँ से कुछ विषयों पर अध्ययन समूहों की अंतर्ज्ञान भी उत्पन्न हुई, जो धर्म सभा प्रक्रिया के दौरान उभर कर सामने आई। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि पीएवी के कुछ सदस्य इसका हिस्सा हैं, और उन्होंने हाल के वर्षों में अकादमी द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस आशा के सामुदायिक आयाम के लिए एक जटिल और वैश्विक संकट के सामने हमें उन साधनों को महत्व देने का आग्रह किया जाता है जिनका वैश्विक दायरा है। यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की प्रगतिशील अप्रासंगिकता को भी ध्यान में रखते हुए है, जो विशेष और राष्ट्रीय हितों की रक्षा से संबंधित अदूरदर्शी दृष्टिकोणों के कारण कमजोर हो रहे हैं। इसलिए हमें अधिक प्रभावी विश्व संगठनों के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करना चाहिए, जिनके पास वैश्विक आम भलाई, भूख और गरीबी का उन्मूलन और मौलिक मानव अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने का अधिकार हो। संत पापा ने अंत में कहा कि यह एक अत्यावश्यक कार्य है जो समस्त मानवता से संबंधित है। उधर संयुक्त राज्य अमेरिका इजराइल के उस निर्णय का समर्थन करता है जिसमें उसने गाजा पट्टी में प्रत्यक्ष मानवीय सहायता को निलंबित कर दिया है तथा हमास द्वारा बंधकों को रिहा किए जाने तक सीमा चौकियों को बंद कर दिया है। यह निर्णय पट्टी में मानवीय सहायता के प्रवेश को निलंबित करने का है, जिससे इसराइल तभी हटेगा जब हमास मध्य पूर्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के दूत द्वारा तैयार तथा कथित विटकोफ योजना को स्वीकार कर लेगा, जिसमें गाजा में युद्ध विराम के लिए समझौते के पहले चरण को लगभग 50 दिनों तक बढ़ाने का प्रावधान है, जिसमें रमजान, इसराइल का पवित्र महीना जो 1 मार्च से शुरू हुआ, और यहूदी फसह की पूरी अवधि भी शामिल है। इस चरण के दौरान इस्लामी समूह से अपेक्षा की जाती है कि वह अभी भी जीवित लगभग 24 बंधकों को रिहा कर देगा तथा मृतकों के शव सौंप देगा। अरब देशों जिनमें मिस्र भी शामिल है, जो युद्ध विराम का एक मुख्य मध्यस्थ है, तथा संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी कड़ी निंदा की है, जिसने अपने प्रवक्ता टॉम फ्लेचर के माध्यम से इजराइल के निर्णय को चिंताजनक बताया। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।